ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। बलिर्वाच यदूतमश्लोक भवान् ममेरितम् वचो व्यलीकं सुरवर्जमन्यते करोमितं तन्न भवेत् प्रलम्भनम् पदं तृतीयं कुरुशेष्ण मे निजम्। कल शाम के सत्र में सुन रहे थे कि श्री भगवान गरुण जी के द्वारा बलि महाराज को बंधवा दिए और बलि महाराज बड़े ही धैर्य में भगवान के सामने खड़े हैं। श्री शुक उवाच एवं विप्रकृतो राजन बलिर भगवता सुरः भिद्यमानोप्य भिन्नात्मा प्रत्यहा विक्लवम वचः। हे राजन, हे परीक्षित, इस प्रकार भगवान ने असुर राज बलि का बहुत बड़ा तिरस्कार किया। एवं भगवता असुरः बलि विप्रकृतः, असुर राज बलि का तिरस्कार किए भगवान। भिद्यमानः अपि अभिन्न आत्मा विक्लवम वचः प्रत्यहा, फिर भी उनके कठिन वाक्यों से, कठोर वचनों से तनिक भी विचलित नहीं हुए बलि महाराज, थोड़ा सा भी व्याकुल नहीं हुए और फिर बोलते हैं, बिल्कुल क्षुब्ध नहीं हुए। सुन लिए और सुनकर मुस्कुराते हुए बड़ा ही गंभीर भाव में बलि महाराज बोलते हैं, अच्छा मैंने बड़ा भारी अन्याय किया, आपको दिया। बलिर्वाच यदूतम श्लोक भवान ममेरितम बचो व्यलीकम सुरवर्य मन्यते करोमृतम तन्न भवेत् प्रलम्भनम पदम तृतीयम कुरुशेष्ण मे निजम। बलि महाराज कहते हैं, हे उत्तम श्लोक, श्रीपाद श्रीधर स्वामी कहते हैं, हे उत्तम श्लोक इति कटाक्ष, वो एक व्यंग बोल रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं, अच्छा मैं बहुत बड़ा बेईमान हूँ, धोखेबाज हूँ, आपको धोखा दिया, वंचना किया और आप उत्तम श्लोक हैं, आपकी महिमा बड़े बड़े उत्तम श्लोकों में, श्रेष्ठ श्लोकों में वर्णन किया गया है, यह तो जगत देख रहा है कौन बेईमान है। तया कपटेन वामन तया भिक्षित्वा रूपांतरस्या विस्कृतत्वात्, आपने कपट से छोटे बौने का रूप धारण करके आए और नापते समय बड़ा बढ़ा लिए और बेईमान मैं हूँ, यही बात है ना। आप तो कुछ भी करेंगे आपका जस गाया जाएगा, आप उत्तम श्लोक है ना, कुछ भी करेंगे, चाहे चोरी करें या चाहे छल करें या कपट करें, फिर भी आप उत्तम श्लोक ही रहेंगे, आपकी सारे कार्य की प्रशंसा किया जाएगा। चोरी करने पर भक्त लोग बड़ा आदर से कहते हैं, चौरा गर्गण्यम तम हम भजामी, हे चोरों का अधिपति आपको हम नमस्कार करते हैं, चौरा अधिपति कृष्ण तम हम भजामी, हे चोरों के अधिपति हम आपको नमस्कार करते हैं। चोरी बहुत अच्छा चीज है, लेकिन फिर भी चोरी करने के बाद भी आप गियमान है, गाए जाते हैं, और माखन चोर नाम आपका बहुत प्रिय है। कुछ भी करेंगे आपका जस तो गाया जाएगा, हम लोग तो कुछ भी करेंगे, अच्छा भी करेंगे तो कपट है, धोखा है, विप्रलब्ध है, इस तरह से आप हमारे प्रति जो कह रहे हैं, मैं धोखा दिया हूँ, लेकिन ठीक है आपने अच्छा किया ना। एवं अपि यदि भवान व्यलीकम मन्नते तथापि रितम में वह हम करोमी, यदि इतना देने के बाद भी आप धोखा मानते हैं तो मैं प्रयास कर रहा हूँ अपने बात को सत्य करने का। मदुक्तम विप्रलम्भनम न भवतु, मेरा वाक्य कभी धोखा में नहीं होगा प्रभु, मैं आपको छल नहीं करूंगा, आपके साथ धोखेबाजी नहीं करूंगा। मैं शिष्य निजम तृतीयम पदम कुरु, मेरे सिर पर आप तीसरा पद रख दीजिए। अगर भगवान कहें कि दो डेग में सारा भूमंडल नाप लिया और तीसरा डेग के लिए थोड़ा सिर दे रहे हो, यही मेरे तीसरे डेग के लिए उपयुक्त है। मैं दो डेग में सारे विश्व को नाप लिया और तीसरा डेग के लिए छोटा सा सिर बता रहे हो। तब कहते हैं कि हाँ, बीते न चेत पद द्वयम जातम, मेरा संपूर्ण संपत्ति दो पद के बराबर है ना, दो डेग के बराबर मेरी संपूर्ण संपत्ति है। तरही दम अधिकम एवं स्यात, मैं उससे ज्यादा देना चाहता हूँ आपको, जितना दिया था उससे दूना दूंगा। कैसे? बीतादपि बीतवतो अधिकत्वादिति भाव, धन से धनवान का कीमत दूना होता है। अगर संपूर्ण भूमंडल दो डेग के बराबर है तो मैं अकेले चार डेग के बराबर हूँ। आए थे तीन डेग मांगने के लिए ना, तो मैं आपको छह डेग दूंगा। आप मेरा शरीर नापिए और छह डेग ले लीजिए, जितनी संपत्ति है उससे अधिक संपत्ति के मालिक का कीमत होता है। बीतादपि बीतवतो अधिक त्वाद्यादि भाव, धन से धनवान का कीमत ज्यादा होता है। आपको मैं कम नहीं दूंगा, मैं स्वयं अपने को देना चाहता हूँ। सारा मम दे दिया, अब अहम भी देना चाहता हूँ। सब कुछ मेरा ले लिए तो मुझे भी ले लीजिए, बस पूर्ण समर्पण। प्रभुपाद जी कहते हैं कि यद्यपि भगवान का उद्देश्य बलि को ठगना था, किंतु बलि को आनंद आ रहा था। लंबा टीका लिखे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा बीच से कह रहा हूँ। भगवान किस प्रकार अपने भक्तों को ठग कर उनकी महिमा बढ़ाना चाहते हैं, इसको बलि महाराज समझ रहे थे। बलि महाराज कह रहे हैं, आपका सब कुछ अच्छा है, आप बहुत अच्छे हैं, चाहे ठगें या पुरस्कृत करें, उससे व्यक्ति का जस बढ़ता ही है। अगर किसी को आप इनाम दें या किसी के साथ धोखा करें, आपसे संबंध होते ही उस व्यक्ति का कीमत बढ़ जाता है। आपसे किसी तरह संबंध हो जाए, कोई आपसे प्रेम से आपका आलिंगन करे या आपके ऊपर धनुष बाण लेकर लड़ने के लिए तैयार हो जाए, दोनों यशस्वी हो जाते हैं। दोनों का जस गाया जाता है, आपके शत्रु या आपके भक्त दोनों प्रशंसित हो जाते हैं, आप बड़े अच्छे हैं, चाहे ठगें या पुरस्कार दें, सदैव अच्छा करेंगे। आपके साथ किसी तरह का संबंध जस को बढ़ाने वाला है। एक प्रसिद्ध कहावत है कि गधे की सवारी से अच्छा है शेर का तमाचा। अगर किसी व्यक्ति को गधे पर चढ़ा दिया जाए, गधा के ऊपर बैठा दिया जाए, तो यह उसका अपमान है। किसी अपराधी व्यक्ति को यह दंड दिया जाता है कि उसको गधे पर बैठा कर घुमाया जाता है। और किसी को कोई शेर कोई सिंह एक तमाचा मारा और इसके बाद भी वो बच गया और उसके तमाचा का चिन्ह उसके गाल पर या सिर पर पड़ा हुआ है, उसके नाखून का चिन्ह। अगर वो बच गया और फिर समाज में घूमेगा, ये कैसे हुआ, तो शेर का पंजा लगा है। अरे वाह वाह, शेर के पंजा लगने के बाद भी बच गया, तो उसको एक वीर बलवान के रूप में माना जाएगा। शेर के तमाचा के बाद भी उसका कीमत बढ़ेगा और गधा के ऊपर सवारी करने के बाद भी उसकी बेइज्जती होगी। आपसे किसी तरह का संपर्क हो जाए, आपका तमाचा लगे, फिर भी जस बढ़ेगा। आप मुझको दंड देंगे, यह भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। बलि महाराज बहुत प्रसन्न है कि ठीक है, आप अपना तीसरा पद मेरे सिर पर रख दीजिए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, यदि यह कहा जाए कि देखो वरुण पास में बंधने के कारण और नरक के जातना से भयभीत होकर अब अपने आप को दान दे रहा है कि अब भी कृपा करेंगे, डर कर ऐसा कर रहा है। यदि भगवान कहे कि तू डर गया नरक जाने से, इसलिए कह रहे हो कि मुझको ले लीजिए, पूरा पूरा शरीर दे रहा है कि अब भी छोड़ देंगे, नरक नहीं भेजेंगे। विभे मिना हम निर्यात पदच्युतो, न पास बंधा व्यसना दुरत्तयात, नैवार्थ कृक्षात भवतो विनिग्रहात, असाधुवादाद भीष्मोद्विजय जथा। अगर भगवान कहे कि तू डर गया समझ में आ गई बात, अपने को दे रहे हो इसलिए कि अब नरक से बचा देंगे, तब कहते हैं कि ना हम विभेमी इति, मैं डर कर नहीं कुछ कह रहा हूँ। विभेमी ना हम निर्यात पदच्युत, मुझे नरक में जाने का भय नहीं है कि मैं नरक में चला जाऊंगा, या पदच्युत या इंद्र के पद से च्युत हो गया, इसका भय नहीं है। न उद्विजे, इससे मैं भयभीत नहीं हूँ। तब पास बंधन से भय है, तो कहते न पास बंधा, ये जो मुझको बांध दिया गया है, अरेस्ट कर दिया गया है, गरुण जी बांध दिए उनको वरुण पास में, तो कहते हैं कि इससे मुझको भय नहीं है, इससे मुक्ति की प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ। दुरातयात व्यसनात्, अपार दुख में पड़ने से नहीं डर रहा हूँ। अर्थ कृक्षात, मेरे पास फूटी कौड़ी भी न रहे, कुछ भी न धन संपत्ति रहे, सब कुछ लूट लिया गया, सब कुछ चला गया, इससे भी मुझको भय नहीं है। भवता विनिग्रहात, आपके द्वारा घोर दंड दिए जाने पर भी मुझको बिल्कुल भय नहीं है। न एवं विभेमी, मैं इससे नहीं डरता। अच्छा, तू इतना निडर है? नहीं नहीं, डरता हूँ, एक चीज से मुझको डर है, यथा असाधुवादात भृषम। मेरे भय का कारण यही है कि मैं अपने अपकीर्ति से डरता हूँ। लोग मुझे बेईमान कहेंगे, लोग मुझे ठग कहेंगे, इससे मुझको भय है। समाज मुझको क्या कहेगी कि देखो एक ब्राह्मण को धोखा दिया, इससे मैं डरता हूँ। मैं धन जाने से नहीं डर रहा हूँ, नरक जाने से नहीं डर रहा हूँ, बल्कि भगवान का भक्त होकर भी ब्राह्मण वंचक के रूप में मेरी लोक निंदा होगी। मैं आपका भक्त हूँ और फिर धोखा दिया, ब्राह्मण को धोखा दिया, आपको धोखा दिया, इस लोक निंदा से डरता हूँ। ये धन संपत्ति क्या है, इसका कोई कीमत नहीं है। कहीं कहा गया है कि चलम चित्तम चलम बीतम चल जीवन जौवनम चला चल मिदम सर्वम कीर्ति जस्य सजीवती। ये तो जाने वाला है, इसमें क्या दम रखा है, सब कुछ चला जाएगा इस प्राकृत जगत से। चंचल चित है, कभी कोई भरोसा नहीं कि आज जो भावना है वही कल रहेगा, बदल सकता है। धन भी चला जाएगा, जवानी चली जाएगी, पूरा जीवन चला जाएगा, संपूर्ण जगत चलायमान है। इस जगत में कोई जीवित रहने वाला चीज है तो वो है कीर्ति। कीर्ति जस्य सजीवती, जिसकी कीर्ति है वही जीवित है। अपने उज्जवल कर्तव्य के कारण वह व्यक्ति हजारों साल तक जीवित रहता है, उसका जस गाया जाता है, कीर्ति जस्य सजीवती। जैसे अपने उदार कार्य के कारण श्रील प्रभुपाद आज भी जीवित है, उन्होंने लोगों को कृष्ण भावना से जोड़ा, उनके लिए सुंदर साहित्य की रचना किए, सुंदर मंदिर दिए, सब लोगों को कृष्ण से जोड़ने का जो प्रयास किए, इसके कारण वो जीवित हैं और आगे भी जीवित रहेंगे। कीर्ति जस्य सजीवती। तो इस प्रकार मुझे अपकीर्ति से बहुत भय है, अपजस नहीं कमाना चाहता हूँ। इसके बाद आगे दो श्लोकों में भगवान के सौहार्द का वर्णन करते हैं। पुंसाम श्लाघतम मन ने दंड मरह तमार्पितम यम न माता पिता भ्राता सुहृद चादि संति ही तम नूनम असुराणाम न पारोक्ष परमो गुरु यो नो नेक मदांधा नाम विभ्रंसम चक्षुरा दिशत। हे प्रभु, वास्तव में आप हमारे सबसे बड़े सुहृद हैं, खासकर असुरों के प्रति आपका जो सौहार्द है वो स्पेशल है। ऐसा सौहार्द तो माता पिता भाई बंधु भी नहीं कर पाते। पुंसम श्लाघ तमम मन ने दंड मरह तमार पितम यम न माता पिता भ्राता सुहृद साध संति ही। अपने पूजनीय गुरुजनों के द्वारा दिया गया दंड जीव के लिए अत्यंत वांछनीय है। पुंसम श्लाघ तमम मन ने अर्हतम अर्पितम दंडम, बड़े लोगों के द्वारा अपने से श्रेष्ठ पूजनीय गुरुजनों के द्वारा दिया गया दंड जीव के लिए एकमात्र वांछनीय वस्तु है, चाहते हैं। श्लाघतमम मन्ने, मैं तो उसको श्रेष्ठ मानता हूँ कि कोई बड़ा व्यक्ति गुरु किसी व्यक्ति को दंड देता है तो वह दंड वास्तव में चाहिए, बहुत उचित है। दंड तो जीव मात्र के लिए अत्यंत वांछनीय है। जब अपने गुरुजन दंड देते हैं तो बड़ा श्रेयस्कर होता है। ही यम माता पिता भ्राता च सुहृद न आदि संति, वैसा दंड माता पिता सुहृद भाई बंधु नहीं दे पाते हैं, मोह के कारण वे लोग नहीं देते हैं। लेकिन गुरुजनों के द्वारा दिया गया दंड किसी भी जीव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे आप व्यवहार में देखते हैं, हम लोग तो कई बार देखे हैं कि जब छोटे छोटे बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा जाता है किसी स्कूल में, या कोई ट्यूशन पढ़ाने वाले टीचर आते हैं और कुछ पढ़ाते हैं, बताते हैं, कुछ करने को कहते हैं, अगर वो नहीं करता है, स्वाभाविक खिलवाड़ में पढ़कर वो नहीं ध्यान दिया तो उस पर तमाचा लगाते हैं, मारते हैं, मारते हैं तो लड़का रोने लगता है। अगर रोते हुए अपने माँ के पास चला जाए उसी तरह तो जानते हैं वो माँ क्या कहती है, नहीं पढ़ेगा हमारा लड़का, क्यों ऐसे मारते हो? इतना स्नेह है बच्चे के प्रति कि बस रोने लगा, बहुत गड़बड़ हो गया। लेकिन टीचर इस पर नहीं विचार करते कि रोने लगा, उनको केवल एक लक्ष्य है कि ये सुधर नहीं रहा है, गलती कर रहा है, इसको सुधारना है। जो सौहार्द किसी जीव के हित के लिए गुरुजनों का है, वो सौहार्द मोह में पड़े हुए माता पिता भाई सुहृद संबंधी का नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। मन्ने, यह मेरी मान्यता है। अरहतम अर्पितम दंडम, जो श्रेष्ठ जनों के द्वारा अर्पित दिया गया दंड है, पुनसम श्लाघतमम मन्ने, जीव के लिए मैं श्रेष्ठकर मानता हूँ, बहुत जरूरी है। श्रील प्रभुपाद इस पर टीका लिखते हैं कि भगवान द्वारा दिया गया दंड भक्त के लिए परम कृपा के रूप में स्वीकार किया जाता है, भक्त लोग स्वीकार करते हैं। तत्ते नुकंपाम सुसमीक्ष मारो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम हृदवाग बपुर विदधन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। जो आपकी अहेतुकी कृपा चाहता है, जो आपकी कृपा का अनुभव करता है, वो व्यक्ति अपने कर्मों के परिणाम से मिलने वाले हर एक परिस्थिति को हंसते हुए सहता है, हंसते हुए झेलता है। जो भी उसके सामने परिस्थिति उपस्थित होती है, उसको अपना कर्तव्य मानकर, अपने कार्य का परिणाम मानकर भोगता है, चाहे वो सुख हो या दुख हो, उसको आसानी से सह लेता है। क्यों? क्योंकि उसका तन मन वाणी सब आप में लगा है। हृदवाग बपुरविद विदधन नमस्ते, वह आप में लगा है। जीवेत जो मुक्ति पदे सदाय भाग, इस प्रकार जो आपकी कृपा मानकर अपना जीवन बिताता है, अगर दुख की स्थिति आई किसी भक्त के जीवन में, तो यह सिद्धांत है कि उसको अपना कर्तव्य मानकर सह ले। मैंने वास्तव में बहुत बुरा कर्म किया था, लेकिन भगवान इतने कृपालु हैं कि उसको मिनिमाइज करके प्रस्तुत किए, बहुत कम किए। मेरे पाप का परिणाम तो बहुत ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन बहुत कम मिला है, यह प्रभु की कृपा है। और कहीं सुखमय स्थिति प्राप्त हुई, बहुत मान सम्मान आदर मिला, तो वैष्णव जन अपना पुरुषार्थ नहीं मानते हैं, ओहो मैं इसके लायक नहीं था, लेकिन वाह प्रभु की अद्भुत कृपा कि मुझको इतना सम्मान मिला, यह है वैष्णवता। मैं कई बार कह भी चुका हूँ, लेकिन याद आ गया तो कह देता हूँ। एक राजा थे, उनका मंत्री भगवान का भक्त था, हर बात में वो कह देता था वाह प्रभु की बहुत बड़ी कृपा, बहुत अच्छा हुआ। कुछ भी होता था, बुरा या भला जो भी होता था, बस यही कहता बहुत अच्छा, प्रभु की कृपा है। तो एक बार राजा के साथ वो वन में चला गया, राजा शिकार कर रहे थे, तब तक किसी तरह बाण में फंस कर धनुष में उनका दाहिना हाथ के अंगूठा कट गया, तो राजा बड़ा दुखी हुए, अंगूठा कट गया एकदम यहाँ से। तो मंत्री भी साथ में था, कोई बात नहीं प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है, बहुत अच्छा हुआ। तो राजा को तो थोड़ा सा बुरा लगा, लेकिन मंत्री का आदत है, राजा जानते थे, कुछ नहीं ध्यान दिए। फिर घर पर जब आए और दूसरे लोग देखकर बड़ा दुखी हुए, हाय हाय करने लगे कि राजा का अंगूठा कट गया, अंगूठा कट गया। वो बार बार बोलता था, बार बार वो बोलता था कि अरे भाई आप लोग अच्छी चिंता क्यों कर रहे हैं, तो प्रभु की कृपा है, बहुत अच्छा हुआ। तो राजा चिढ़ गया, कहा कि इसको बंद कर दो जेल में, बार बार बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ कर रहा। तो जब बंद करने लगे तब कहा बहुत अच्छा प्रभु की कृपा। जेल में गया तब भी प्रभु की कृपा। आ तब एक बार दूसरे बार की घटना है कि राजा साहब ऐसे ही एकांत में अकेले वन में घूम रहे थे, और उधर एक दस्यु ग्रुप, डाकुओं का ग्रुप रहता था, जो साल में एक बार नरबलि देता था, एक मनुष्य को बलि देते देवी के सामने। तो अब वो किसी आदमी को खोज रहे थे, तब तक बड़ा सुंदर शरीर वाला राजा मिल गया, तो राजा को पकड़ लिए और ले गए देवी के पास। तो फिर अंत में चेक करने लगे, कहीं से कटा फटा नहीं ना, सब ठीक ठाक है ना, कोई अंग भंग न हो, ऐसे व्यक्ति को काटना है। तो जब चेक होने लगा तो अंगूठा कटा था, तब कह रहे ये तो बहुत परेशान किया, एक आध तमाचा लगाए और भगा दिए, कहे कि पहले देखने में इतना सुंदर लगा और अंगूठा कटा है, दिन भर परेशान किया, तो भगा दिए। और राजा जब वहां से बचा तो हम महसूस किया, अरे मंत्री तो ठीक कहा था, अगर उस दिन अंगूठा नहीं कटा होता तो आज गर्दन कट जाता। तो राजा ये अनुभव करके राजधानी में आए और कहे कि मंत्री को जेल से निकालो। तो जेल से निकाले और कहे कि मंत्री जी, उस दिन जो आप कहे कि बहुत अच्छा हुआ प्रभु की कृपा, इसका अनुभव तो मैं कर लिया, लेकिन ये बात समझ में नहीं आई कि आपको जेल में बंद करके प्रभु क्या अच्छा किए। तो कहे कि यह भी स्पष्ट है महाराज, यदि मैं जेल में नहीं रहता तो आज भी आपके साथ गया होता। आप तो अंगूठा कटने से बच जाते, मेरा गर्दन कट जाता। प्रभु ने आपका अंगूठा कटवा कर बचा लिया और मुझे बंद करा कर बचा लिया, यह है प्रभु की कृपा। तो इस तरह जो जीवन जीता है, हर बात में भगवान की कृपा को देखता है, वास्तव में वैकुंठ का अधिकारी है। यही बात ब्रह्मा जी कह रहे हैं और प्रभुपाद जी इसको कोट कर रहे हैं कि यह है वैष्णव की जीवन शैली, कि भगवान के हर व्यवहार को उनकी कृपा के रूप में देखते हैं। बांध दिए गए हैं चारों तरफ से, वरुण पास में अरेस्ट हैं, ऊपर से डांट भी सह रहे हैं, इसके बाद भी कह रहे हैं कि पुनसम श्लाघ तमम मन्ने दंड मरहत मारपितम, मैं आपके द्वारा दिया गया दंड को वांछनीय मानता हूँ, श्रेयस्कर मानता हूँ। ऐसा सौहार्द माता पिता भाई बंधु नहीं कर सकते। यह है बलि महाराज की वैष्णवता। तम नूनम असुराणाम न परोक्ष परमो गुरु यो नो नेक मदांधा नाम विभ्रंसम चक्षुरादिशत। हे प्रभु, वास्तव में आप परोक्ष रूप में इन असुरों के गुरु हैं, अवश्य ही आप हमारे असुरों के परोक्ष रूप में छिपे हुए गुरु हैं। जब हम लोग धन कुलीनता बल आदि अनेक मद से, अनेक मद अंधा नाम, अनेक मद से अंधे हो जाते हैं, तब आप कृपा करके उन वस्तुओं को छीन कर हमें नेत्र प्रदान करते हैं। चक्षुर नुमिलितम जेन तस्मय श्री गुरवे नमः। वास्तव में आप आंख देते हैं। हम लोग जब अंधे हो जाते हैं, किसी को पहचानते ही नहीं, धन मिल जाता है, पद मिल जाता है, तो लोगों का अपमान कर देते हैं। जब हमारे ऊपर मोतिया बिंद छा जाता है अहंकार का, तो आप ऑपरेशन करते हैं, हमारा धन छीन लेते हैं, हमको उन वस्तुओं से अलग कर देते हैं, अर्थात हमें नेत्र प्रदान करते हैं, आप हमें चक्षु देते हैं। चक्षु दान दिला जाई जन्मे जन्मे प्रभु से ही। इस प्रकार हमारे एकमात्र प्रभु आप हैं, आपने हमको आंख दिया है, सब कुछ छीन लिया है। वास्तव में हमारा अहंकार बढ़ गया था, हम देवताओं का अपमान कर रहे थे, तो आपने हमारी संपत्ति छीन कर हमें नेत्र प्रदान किया। हम दिग्भ्रमित हो गए थे, मिथ्या प्रतिष्ठा में पड़े हुए थे, हम आपके भक्तों का अपमान कर रहे थे, आपने बहुत अच्छा किया है, धन छीन लिया। इस तरह से बलि महाराज प्रशंसा कर रहे हैं। देवताओं से ज्यादा कृपा हमारे ऊपर है, जितनी कृपा आप देवताओं के साथ कर रहे हैं उससे ज्यादा मेरे ऊपर कर रहे हैं। आप तो यह धन संपत्ति फंसा देने वाला, लोगों को अज्ञान में डाल देने वाला आप इंद्र को देंगे और हमें इस धन से मुक्त कर देंगे, बहुत बड़ी कृपा है, बहुत अच्छा हुआ। फिर आगे कहते हैं, जस्मिन बैरानु बंधे न रूढ़े न विबुधे तरा बहो लेभिरे सिद्धिम यामु हैकांत जोगिन। हम लोगों के ऊपर आपका जो उपकार है उसे मैं कैसे बताऊं प्रभु, आपने बहुत बड़ा उपकार किया है, उसको किन शब्दों में मैं वर्णन करूं। ऐसा सौभाग्य, ऐसा सौहार्द तो अनन्य भाव से भजन करने वाले जोगियों को भी बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। एकांत जोगिन याम सिद्धिम ले भी रे, अनन्य भाव से आपकी साधना, आपकी भक्ति, आपका भजन करते करते जो जोगी लोग जो प्राप्त करते हैं, बहुत काल के बाद सिद्धि प्राप्त करते हैं, वह बहव विबुध इतरा बहुत से असुरों को यस्मिन रूढ़े न बैर अनुबंधे न, केवल आपसे झगड़ा करके, आपसे बैर करके, बैर के बंधन से बंधे हुए असुर लोग वही सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं जो जोगियों को प्राप्त होता है। जोगी लोग तपस्या करके कठिनाई से जो गति प्राप्त करते हैं, वह असुर लोग आसानी से लड़ाई करके प्राप्त कर लेते हैं। यह स्थिति है। मेरे जैसे एकांतिक भक्तों की बात तो बहुत दूर रही प्रभु, चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं। जो आपसे निरंतर बैर करते हैं उनके प्रति भी आप अलौकिक दया करते हैं, उनके प्रति भी, यह आपका सौहार्द है, यह आपका गुरुत्व है, वास्तव में आप हमारे प्रति सुहृद हैं। विदुर जी से उद्धव जी कहते हैं, जब जमुना तट पर मिलन होता है तो वर्णन करते हुए कहते हैं, हे विदुर जी, वास्तव में हम लोग बड़े अभागे हैं। हम तो दुनिया में प्रसिद्ध हैं कि कृष्ण के भक्त हैं, लेकिन हमारे दुर्भाग्य की कोई सीमा नहीं। हम तो अपने से असुरों को ज्यादा सौभाग्यशाली मानते हैं, जिन असुरों को जीवन के अंत में मरते समय भगवान का दर्शन हुआ, जो गरुड़ जी के पीठ पर चढ़े हुए, चक्र लिए हुए या धनुष लिए हुए, गदा लिए हुए प्रभु का दर्शन करते रहे, लड़ते हुए भगवान से विरोध करके लड़े, और लड़ करके जो जीवन के अंत में उनका दर्शन करते हुए शरीर छोड़े, वैसा सौभाग्य हमारे जीवन में नहीं मिलने वाला है। प्रभु का दर्शन शरीर छोड़ते समय नहीं मिलेगा। तो हम तो अपने से श्रेष्ठ उन असुरों को मानते हैं। हमारे जीवन में तो यही अभाव, यही दुर्भाग्य है कि हम उनके विरह में तड़प रहे हैं, रो रहे हैं। जीवन भर साथ में रहे और अब उनके विरह में रोना पड़ रहा है। तो यह असुरों के प्रति सौहार्द है ना भगवान का। जस्मिन बैरानु बंधे न रूढ़े न विबुधे तरा, विबुध इतरा, देवताओं से भिन्न जो है असुर, उन लोगों का जो सौभाग्य है कि बैर बांध कर लड़ाई करते रहते हैं, वो बहो ले भीरे सिद्धि, वो भी सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, जो योगियों को सिद्धि प्राप्त होता। तेनाहम गृहीतोस्मि भवता भूरि कर्मणा, बधश्च वारुण पाशई नाति ब्रीडे न चव्यथे। हे भूरि कर्मणा, आपकी लीला, आपकी महिमा महान है, अनंत है। तेन भवता अहम, ऐसे महान प्रभु के द्वारा मैं गृहीत अस्मि, पकड़ लिया गया हूँ। अच्छा, वारुण पाशई बद्ध, और वरुण पास में बांध दिया गया हूँ। न तिब्रीडे न चव्यथे, इससे न तो मुझे कोई विशेष लज्जा है और न किसी प्रकार की व्यथा है। जो आप मुझे पकड़ लिए और बंधवा दिए हैं, तो बंध जाने से मुझको बहुत ज्यादा लज्जा नहीं है और न किसी प्रकार का कष्ट है। तो चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ज्यादा लज्जा नहीं है, लेकिन थोड़ा है। केवल कहना चाहिए कि मुझको कोई लज्जा नहीं है, कोई संकोच नहीं है। तो कहते हैं कि न अति ब्रीडे, मुझे ज्यादा लज्जा नहीं है, बहुत लज्जा नहीं हो रहा है। एक बार बांध देने पर थोड़ा सा संकोच हुआ कि मैं त्रिलोकी का राजा हूं और मुझे अरेस्ट किया जा रहा है, लोग क्या कहेंगे देखकर, थोड़ा सा मेरे मन में संकोच हुआ। लेकिन विचार जब किया कि चलो बांधा भी गया तो प्रभु के द्वारा, गुरु के द्वारा दंडित हुआ, तब तो मुझे शांति मिली। चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं अतिशय लज्जा नहीं हुई, क्योंकि तेन भूरि कर्मणा, आप जैसे महामहिम के द्वारा मैं बांधा गया हूँ। साधारण लोग मुझको नहीं बांधे हैं, आप बंधवाए हैं, गरुड़ जी बांधे हैं, इसलिए मुझे अतिशय लज्जा नहीं, थोड़ा सा संकोच जरूर हुआ। राजा होने का अभिमान था, वो अभी हमारे चित्त की अशुद्धता के कारण हुआ। यह भाव है, हमारा चित्त अशुद्ध था प्रभु, चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, इसलिए थोड़ा सा मुझको लज्जा हुई कि लो मुझको बांध दिया गया, कहां मैं त्रिलोकी का राजा और अभी बांध दिया गया, तो थोड़ा सा संकोच हुआ, लेकिन ज्यादा नहीं हुआ। फिर जब आपके महानता पर विचार किया, तब अब कोई लज्जा नहीं है। तब अब फिर आगे कहते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक, पिता महो में भवदीय सम्मत प्रहराद आविष्कृत साधुवाद भवद विपक्षेण विचित्र वैशसम संप्रापितस्तत परम स्वपित्रा। कहते हे प्रभु, मेरे पितामह प्रहलाद की कीर्ति सारे जगत में प्रसिद्ध है। मे पितामह प्रहलाद साधुवाद आविष्कृत, सब जगह मेरे पितामह प्रहलाद की कीर्ति फैली हुई है। भवदीय सम्मत, क्यों? क्योंकि वो आपके भक्तों में प्रसिद्ध है, आपसे उनका संबंध है। स्वपित्रा विचित्र वैशसम संप्रापित तत्परम, अपने पिता हिरण्यकश्यपु के द्वारा दुख देने के बाद भी वे अपने जीवन को आपके चरणों में निच्छावर किए, इसके कारण उनकी बहुत बड़ी प्रसिद्धि हुई है। अपने पितामह प्रहलाद की चर्चा कर रहे हैं कि पितामह प्रहलाद का जस संपूर्ण जगत में फैला हुआ है, सब जगह लोग उनकी कीर्ति गाते हैं। किस कारण से वो प्रसिद्धि मिली? क्योंकि वो आपके चरणों में अपने आप को समर्पित किए, अपने पिता के मना करने पर भी विरोध करने के बाद भी, दुख देने के बाद भी उन्होंने आपके चरणों में अपने आप को निछावर किया, वास्तव में आप हमारे कुल के देवता हैं। यह नहीं कि आज मैं भजन कर दिया, नया कार्य कर दिया, आप हमारे इष्ट देव हैं, कुल गुरु हैं, कुल देव हैं। हमारे पूर्वजों ने आपकी पूजा किया है, हमारे दादाजी ने आपकी पूजा किया है, आपके द्वारा दिया गया दंड सहनीय है, सहने लायक है, और आप भी, ये व्यक्ति हमारे भक्त का पौत्र है, आपके मन में भी ये बात है कि मैं प्रहलाद का पौत्र हूँ, यह विचार करके स्नेह कर रहे हैं, आप मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं। मेरे पितामह प्रहलाद अपने बाप क्या वो शत्रु था, भवत विपक्षेण, उनका विरोध करने वाला था, उनके द्वारा उत्पीड़ित होने पर भी एकमात्र आपका ही शरणागति लिए, आपके चरणों को नहीं छोड़े, इस कारण से उनकी कीर्ति इस जगत में फैली हुई है। अच्छा, प्रहलाद क्यों ऐसे समर्पित किए, तो बलि महाराज बता रहे हैं कि प्रहलाद के मन में क्या था अपने बाप की बात उल्लंघन करने के पीछे, तो उन्होंने निश्चय कर लिया है। प्रहलाद महाराज ने निश्चय किया था, क्या निश्चय किया था, कि मात्मना ने न जहाति अंततः किम रिक्तहारै स्वजनाख्य दस्युभिः किम जायया संसिति हेतु भूतया मर्तस्य गेहै किम याजसो वयः। प्रहलाद महाराज निश्चय किए थे, क्या निश्चय किए, कि अनेन आत्मना किम, आत्मा का अनेक अर्थ है, उसमें एक अर्थ देह भी है, तो अनेन आत्मना किम, शरीर को लेकर क्या करना है, क्या फायदा है इस शरीर से, यह अंततः जहाति, जो एक दिन साथ छोड़ ही देगा। अगर मान लीजिए शरीर को खूब बढ़िया से खिलाए पिलाए, कपड़ा पहनाए, खूब साबुन तेल पाउडर लगाकर चकचक रखते हैं, किस लिए, एक दिन साथ छोड़ेगा, अनेन आत्मना किम यह अंततः जहाति, जो अंत में साथ छोड़ेगा, उस शरीर के पीछे इतना पड़ने की क्या जरूरत है, प्रहलाद महाराज सोच रहे हैं, उनका विचार बलि महाराज भगवान से कह रहे हैं, क्या जरूरत है शरीर पर इतना ध्यान देने का, जो एक दिन छूटेगा, चाहे किसी का शरीर हो, वो छूटने वाला है, अंततः जहाति, जो अंततः छूटने वाला है, एक पॉइंट, इस शरीर पर ध्यान देने की क्या जरूरत है। प्रहलाद महाराज मन में न्यूट्रल हो रहे हैं शरीर से। किम रिक्त हारई स्वजनस्य आख्यम दस्युभिः किम, जो धन संपत्ति छीनने के लिए ही स्वजन का बाना पहनकर वे डाकू हमारे सामने उपस्थित हैं, उनसे हमारा क्या स्वार्थ है। रिक्त हारई, धन छीनने के लिए, स्वजनाख्य, स्वजन की संज्ञा लेकर, बस बेटा बेटी भाई बंधु जात परिवार, यह संज्ञा लेकर जो दस्युभि डाकू हैं, छीन रहे हैं, उनसे हमारा कौन सा स्वार्थ सदने वाला है, तो हमारे सारे जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। कमा कमा कर धन जुटाते हैं और बेटा ले लेता है, बेटी को देना पड़ता है, और कुछ स्वजन परिवार ले लेता है, सारा जीवन बीत गया धन कमाने में, और ये डाकू लोग आसानी से ले लेते हैं। कहते दस्युभि, ये डाकू हैं, डाकू हैं, तो हाँ, केवल स्वजनाख्य, केवल स्वजन का संज्ञा भर है, लेकिन एक्चुअली डाकू है, वास्तव में डाकू है। प्रहलाद महाराज विचार कर रहे हैं, देखिए ना कितना आसानी से छीन लेते हैं। डाकू तो भय दिखाता है, राइफल रिवाल्वर दिखाकर छीनता है, और ये लोग अपने को बेटा कहकर छीन लेते हैं, केवल स्वजन की बाना पहन कर पापा कहकर ले लेते हैं। बस कहीं से कमा कर दिन भर परिश्रम करके मर कर आए घर में, और तोतली बोली से पापा कहा बस जा, पापा कहा उसको गोद में लेते हैं, चुमते हैं, खिलाते हैं, उसके लिए सब कुछ कमाते हैं, और जब बड़ा होता है बिल्कुल बात नहीं मानता, फिर भी क्या करें, अपना जन्म है, अब उसको कैसे करें, गोली मार दें, कुछ भी करें तो अपना है, और यह अज्ञान यह मोह जो पकड़ कर घेरता है, उसे जीव का कितना हित हो रहा है। भागवत एकदम निष्कलंक ग्रंथ है, कायतव रहित ग्रंथ है, इसमें कोई कपट नहीं है, निरस्त कुहकम, सारा ज्ञान सारा कुहक पहले से हटा दिया गया है, इसके भूमिका में ही व्यासदेव कहते हैं मैं ऐसे ग्रंथ की रचना कर रहा हूँ जिसमें कोई कपट नहीं है, तो अब देखिए निष्कपट प्रवचन। कहते हैं हे प्रभु, हमारे पितामह ने निर्णय किया कि किम रिक्तहारई स्वजनाख्य दस्यु भी, रिक्तहारई स्वजनाख्य दस्यु भी किम, ये धन संपत्ति छीनने वाले स्वजनों से क्या लाभ है, क्या मिलने वाला है इन डाकुओं से। अच्छा, ये स्वजन का तो एक खाता में रख दिए और अलग से पत्नी के लिए अलग खाता बना रहे हैं। संसिति हेतु भूतया जायया किम, किम जायया संसिति हेतु भूतया, पत्नी से क्या लाभ जिसके चक्कर में पड़ने से जन्म मृत्यु का प्रवाह चालू हो जाता है। संसिति हेतु भूतया, जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र में डालने वाली जायया किम, पत्नी से क्या लाभ है, उसके चलते ही तो ये चक्कर चालू हो जाता है। अब विवाह करने की कामना होते ही कमाने की कामना सवार, धन चाहिए, घर चाहिए, पैसा चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, जुटाना पड़ता है, प्रारंभ हो जाता है कमाना। तो इस तरह से स्त्री शब्द से विस्तृत शब्द होता है, बिना विस्तार के स्त्री नहीं रह सकती। स्त्री का अर्थ है कि विस्तार करने वाली, एक से दो, दो से तीन, और फिर घर मकान रिश्तेदारी संबंधी, बेटा का विवाह करो तो एक संबंध बढ़ा, बेटी का विवाह करो तो विस्तार बढ़ जाता है। तो इससे जो विस्तार बढ़ता है और मन बुद्धि चित जब फंसता है तब फिर अगला जीवन भी तैयार हो जाता है। अब तो जाना ही पड़ेगा, इसी में फंस कर जीवन बिता दिए। तो संस्कृति हेतु भूतया, संस्कृति का अर्थ है आवागमन का चक्कर, जन्म मृत्यु का प्रवाह, एक जन्म के बाद दूसरा जन्म, दूसरा जन्म के बाद तीसरा जन्म, इसका कारण स्त्री को प्रहलाद महाराज समझ रहे हैं। मर्तस्य गेहै किमिहा जिसो बया, इस प्रकार मनुष्यों को इस घर से क्या मतलब जिसमें सारा जीवन ही बीत जाता है, आयुषा व्यय, सारा आयु को व्यर्थ में नष्ट कर देने वाले इन घर मकान से क्या लाभ है। खूब बड़ा मकान चाहिए तो खूब कमाना पड़ेगा, खूब पैसा चाहिए तो बहुत ज्यादा मकान बनाने में जो समय लगता है और पैसा लगता है उसमें उम्र समाप्त हो जाता है। इन सब वस्तुओं में उलझ जाने से केवल अपनी आयु ही खो देना है और कुछ नहीं है। अंततः इसमें केवल आयु बर्बाद होता है, अंततः आयुषो अंते, ये सब समाप्त हो जाता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि प्रहलाद अपने पिता की अपेक्षा न रखते हुए क्यों हमारे शरणापन्न हुआ। मानो भगवान पूछ दें कि पितामहो में भवदीय सम्मत यह बात कह रहे हो कि पितामह मेरी भक्ति किए, तो ये अपने पिता की परवाह क्यों नहीं किया आपका पितामह प्रहलाद। उसके उत्तर में दो श्लोक बोलते हैं आगे की मिति, यहाँ से प्रारंभ करके नौवां और दसवां, कि देह द्वारा अर्थात आयु समाप्त होने पर यह देह अवश्य ही जीव को परित्याग देगा, इसमें कोई स्वार्थ साधने वाला नहीं है। यह विचार किए और रिक्त हारई, अपने लिए जो धन को छीन लेने वाले स्वजन, स्वजन नाम डाकुओं से क्या प्रयोजन है। तो सब मिलाकर सारांश रूप में प्रहलाद महाराज ने चार विचारणीय बिंदुओं पर विचार किया। शरीर साथ छोड़ने वाला है, इसको लेकर हम क्या करेंगे, इसके फेरे में पड़ने से क्या लाभ, धन लेने के लिए स्वजन नामधारी बेटा बेटी जाति परिवार ये सब बंधे हुए है, इनकी संज्ञा स्वजन है लेकिन वास्तव में डाकू है, सब छीन लेते हैं, सब छीन लेते हैं। गांव में हम लोग देखते हैं कि बेचारा बाप किसान है, बड़ी परिश्रम करके खेती करके कुछ पैसा अर्जन करता है, फटा पुराना कपड़ा पहनकर जीवन यापन करता है और बेटे को भेज दिया है शहर में पढ़ने के लिए, उनको कम से कम 3,000-4,000 महीना में चाहिए, और कैसे परिश्रम करके अपने धन को, गेहूं धान जो उत्पन्न करता है उसको बेच कर पैसा देता है, और वो बेटा किस मस्ती से पढ़ रहा है, कितना वो धनियों का स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहा है। जिस स्कूल कॉलेज में अफसर के, बड़े बड़े धनियों के, सेठों के लड़के आते हैं, उसी स्कूल कॉलेज में किसान के भी बेटा है, अपना स्टैंडर्ड नहीं विचार करता, उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए बाप को बहुत तंग करता है, इतना पैसा चाहिए, उतना चाहिए, अब ड्रेस चाहिए, उसको देता रहता है। और उस बेचारे किसान बाप की स्थिति क्या है, नया कपड़ा पहनने का मुअसर नहीं होता, उसी बेटे का छोड़ा हुआ कपड़ा पहनता है, क्योंकि वो तो साल डेढ़ साल छह महीना में पुराना हो जाता है, उसको रिजेक्ट करता है, तो उसी को बेचारा बाप पहनता है, अपने भूखे पेट रहकर गरीबी में रहकर उसको देता है। अब बताओ वो डाकू नहीं है तो क्या है? इतना परिश्रम किया और सब छीन लिया, जब वो कमाने लगा तब बाप से कोई मतलब नहीं, अब तो बीबी के साथ अलग है, अब तो बाप का कोई केयर ही नहीं, ये बताने में संकोच करेगा कि ये मेरा बाप है। कुछ कुछ तो ऐसे नलायक होते हैं कि अगर बाप कहीं चला भी जाए तो दूसरों को बताते हैं हमारे गांव का नौकर है हमारे, अपने बाप को अपने भाई को अपने संबंधी को ऐसे भी कह देते हैं, वास्तव में डाकू है, लेने के समय बेटा है और जब आदर सत्कार सम्मान करना हो तब संकोच करते हैं। इस तरह से इन डाकुओं से क्या प्रयोजन सदने वाला है, और पत्नी जो जन्म मृत्यु के चक्र में डालने वाली है उससे क्या लाभ है? जब मरना ही है तो घर के मोह में व्यर्थ क्या पड़ना है? लोमस ऋषि बड़े प्रसिद्ध है वैदिक इतिहास में। एक बार लोमस ऋषि से कोई महात्मा पूछे कि आपका आश्रम कहाँ है? कुटिया। नहीं, ऐसे ही हिमालय में जहाँ तहाँ रहता हूँ। तो कहते क्यों नहीं आप कुटिया बनाते हैं? कहते जब एक दिन मरना है तो कुटिया क्या बनाना है। तो जानते हैं लोमस ऋषि कम मरते हैं, लोमस ऋषि की आयु क्या है, उनके शरीर में रोए हैं और एक एक रोआ टूटता है स्वाभाविक। कब टूटता है? जब एक ब्रह्मा की आयु समाप्त हो जाती है तब लोमस ऋषि का एक रोआ टूटता है। और एक ब्रह्मा का उम्र कितना है? चारों युग बीतता है 43,20,000 वर्ष, तो एक चतुर्युगी को मिलाकर होता है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। और ऐसे ऐसे 1,000 चतुर्युगी जब बीतता है तो ब्रह्मा का एक दिन होता है, और वैसे बड़े दिन से 30 दिन का एक महीना और 12 महीना का एक साल, और उतने बड़े लंबे साल से 100 साल ब्रह्मा जीते हैं जिसको द्विपरार्ध कहते हैं। तो जब एक ब्रह्मा का आयु समाप्त हो जाता है तब लोमस ऋषि के शरीर का एक रोआ टूटता है, और ऐसे करके उनके शरीर में कितने लाखों करोड़ों रोए हैं, जब वो सब टूटकर पूरा शरीर का एक एक रोआ झड़ जाएगा तब उनकी मृत्यु होगी। इसके बाद भी वो कहते हैं जब मरना ही है तो क्या कुटिया बनाना है। और हम लोगों की स्थिति है कि यात्रा करते समय 2-3 घंटा के लिए कोई अपना सीट रिजर्व होता है, उस पर अगर कोई दूसरा बैठ जाए, ये मेरा सीट है क्यों बैठा? अरे क्या तुम्हारे बाप का है 2 घंटा के लिए रिजर्व कर लिए हो? तो क्या हो गया? ये हमारी मान्यता है, घर संपत्ति मकान इसके लिए लोग क्यों टाइम दे रहे हैं, व्यर्थ उम्र क्यों बिता रहे हैं, प्रहलाद महाराज सोच रहे हैं। इत्थम सनिश्चित्य पितामहो महान अगाध बोधो भवतः पाद पद्मम ध्रुवम प्रपेदे यकुतो भयम जनाद भीत स्वपक्ष क्षपणस्य सत्तमः। इत्थम निश्चित्य, ऐसा निर्णय लेकर ऐसा निश्चय करके पितामह मेरे पितामह स्वपक्ष क्षपणस्य, यह जानते हुए कि आप लौकिक दृष्टि से उनके भाई बंधुओं को नाश करने वाले शत्रु के रूप में हैं, फिर भी जनात भीत, जनात भीत शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, प्रभुपाद जी इस पर लिखते हैं, जनात भीत संसार के लोगों से भयभीत होकर जन संसर्ग से डर कर अकुत भयम पाद पद्मम प्रपेदे, आपके भय रहित चरण कमल को दृढ़ता से पकड़ लिए, ऐसा निश्चय करके। इस संसार फंसाने वाला है, इसमें नहीं फंसना है, जो 4 निर्णय प्रहलाद महाराज का है उस पर विचार करके ध्रुवम प्रपेदे या कुतो भयम जनाद भीत स्वपक्ष क्षपणस्य सत्तमः, आपके चरण कमल को दृढ़ता से प्रपेदे पकड़ लिए। क्यों ऐसा पकड़ लिए? तो विशेषण बता रहे हैं, अगाध बोध सत्तमः महान, 3 विशेषता बतलाते हैं कि अगाध बोध, अगाध बोध संपन्न है, उनका बोध उनका ज्ञान बहुत बड़ा है, 3rd क्लास के ज्ञान प्रहलाद महाराज नहीं रखते हैं, बहुत बड़ा ज्ञान है, सबको एज इट इज पहचानते हैं, कहाँ फसावट है, कहाँ अपना स्वरूप निखरेगा, कहाँ कैसे व्यवहार करना चाहिए, सब कुछ जानते हैं, इसलिए अगाध बोध। और सत्तम, सत्तम सत्पुरुषों में श्रेष्ठ हैं और महान, इसलिए वो महान है। तो ये 3 विशेषण दे रहे हैं बलि महाराज अपने पितामह को, अगाध बोध संपन्न हमारे पितामह सत्पुरुषों में श्रेष्ठ माने गए हैं, और बड़े उदार हैं, महान हैं, वे आपकी भक्ति करते हैं। क्यों भक्ति करते हैं, एक ही श्लोक में कई बातें बतला रहे हैं। क्योंकि अकुतो भय पाद पद्म, आपके चरण जो है उसमें किसी प्रकार का भय नहीं है, अगर उसका शरण ले लिया जाए तो भय से मुक्त। शरण लेने की बात तो दूर है, केवल एक बार उस चरण में प्रणाम कर दिया जाए तो भय से मुक्त है। वाल्मीकि रामायण में एक श्लोक है कि सक्री तेव प्रपन्नो ज तवास्मिति जयाचते अभयम सर्वदा तस्मै ददा मे तद्व्रतम मम। भगवान श्री राम कहते हैं कि सकृत एव प्रपन्नो जह, जो व्यक्ति एक बार प्रणाम कर देता है मेरे चरणों में और प्रणाम करके हाथ जोड़कर कह देता है तवास्मिति जयाचते, हे श्री राम मैं आपका हूँ, बुरा हूँ भला हूँ कुछ भी हूँ, हे नाथ मैं आपका हूँ, मैं उसको सदा के लिए अभय कर देता हूँ, ये मेरा व्रत है, मैं संकल्प पूर्वक प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ कि वह मुक्त हो जाता है, सारे भय से रहित हो जाता है। यह भगवान का वाक्य है। भगवद गीता में भी यही बात कहते हैं कि मनमना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैससी सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में, जो मुझ में मन लगाएगा, मेरा भजन करेगा, मुझे प्रणाम करेगा, मुझे नमस्कार करेगा, मेरी पूजा करेगा, वो निश्चित मुझको प्राप्त होगा, यह मैं सत्य कहता हूँ, ये मेरी प्रतिज्ञा है, वो मुझे प्राप्त होगा। मामे ऐससी, मुझे प्राप्त होगा, अपने प्रिय व्यक्ति से झूठ नहीं बोला जा सकता, इसलिए हे अर्जुन तू मेरे प्रिय हो, मैं सत्य कह रहा हूँ कि मुझको प्राप्त होगा। तो इस प्रकार यह अभय पद है भगवान का, भगवान के चरण कमल का शरण लेने वाला व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। इस तरह से प्रहलाद महाराज ने आपके चरणों को पकड़ा, क्योंकि वो बुद्धिमान थे, अगाध बोध थे। डल माइंडेड लोग कृष्ण को नहीं स्वीकार करते, जहां भी भजन करने की बात आती है वहां बोध संपन्न सुमेध सह, कीर्तन के द्वारा भगवान की आराधना कलयुग में करेंगे कौन लोग, सुमेधा लोग, जजंती ही सुमेध सह, संकीर्तन के द्वारा जो भजन करेंगे सुमेधा लोग करेंगे। प्रहलाद महाराज भी कहते हैं कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवता निह, भक्ति का आचरण बुद्धिमान लोग बचपन में करते हैं। भजन करने वाले वास्तव में बहुत बुद्धिमान होते हैं, मूर्ख लोग भजन नहीं करते। प्रभुपाद जी जब भी ऐसा शब्द पकड़ते हैं तो खूब लिखते हैं। तो इस प्रकार भगवान के विषय में बोलते जा रहे हैं। अभी एक श्लोक और है, लेकिन चलिए इसको बाद में दूसरे सत्र में कहेंगे। हरे कृष्ण, जय श्री राधे।